हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ श्लोक 1.2.4। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं अध्ययन करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रावजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीति तिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद्भागवतम के प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय में मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे, और अभी इस द्वितीय अध्याय में सुत गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले शुरू के 3 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में उन्होंने अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी के वैराग्य का वर्णन किया, और द्वितीय श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने अपनी करुणा का प्रदर्शन करते हुए जो यह महापुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण हमें प्रदान किया, उसकी विशेषताएं बताते हुए बतलाया कि जो भागवतम महापुराण मेरे गुरु महाराज ने अत्यंत ही करुणा से भरकर हमें प्रदान किया, वह भागवतम मनुष्य को उसका स्वभाव प्रदान करने वाला समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार और आध्यात्म यानी दिव्य दीपक है, जो जो जीव इस अंधकार से, इस संसार के गहन अंधकार से मुक्त होकर भगवान की शरण प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिव्य दीपक है। और ये मेरे गुरु महाराज ने संसारिणाम करुणायाः पुराण गुह्यम्, तो ऐसे अपने गुरु महाराज को तम व्यास सोन उपयांति, उपयामी का मतलब होता है मैं नमस्कार कर रहा हूँ। किसको? जो व्यास सोन यानी व्यास जी के, व्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव गोस्वामी का नाम नहीं दिया, उन्होंने क्या कहा कि व्यास जी के पुत्र हैं और समस्त गुरुओं के मुनि हैं, समस्त मुनियों के गुरु हैं। कि जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन करने आए थे राजा परीक्षित की सभा में, तो समस्त जितने भी मुनि वहां पर बैठे थे सबने सादर नमस्कार करके उनको नियुक्त किया था कि हाँ यही यही इस योग्य हैं, यही सुखदेव गोस्वामी ही इस योग्य हैं कि वो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का और उनकी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। तो समस्त मुनि जितने भी थे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का शिष्यत्व स्वीकार किया था। तो सुखदेव गोस्वामी उन सबके मुनि हैं, इसलिए तम व्यास सोनम उपयामी, उपयामी का मतलब होता है मैं नमस्कार करता हूँ। और उससे पहले वाले श्लोक में जो उन श्लोक नंबर 2 यानी कि जो सुत्त गोस्वामी का फर्स्ट श्लोक था, उसमें भी उन्होंने क्या किया कि सर्वभूत हृदयम मुनि आनतोस्मी, आनतोस्मी का क्या मतलब होता है कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। और आज के श्लोक में यह भी मंगलाचरण का श्लोक है और ये अत्यंत ही प्रसिद्ध श्लोक है। वास्तव में जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं उससे पहले यह श्लोक का उच्चारण किया जाता है, बहुत ही सुंदर और अत्यंत ही प्रसिद्ध है। आप सबको आता भी होगा ये वाला श्लोक, फिर भी मेरे साथ साथ उच्चारण करिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। शब्दों का अर्थ देखिए, नारायणं अर्थात भगवान को नमस्कृत्य अर्थात नमस्कार करके, नरम च एव तथा नर ऋषि और नारायण ऋषि को, नरोत्तमम अर्थात संसार में जो सबसे उत्तम मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, और कौन, देवी यानी देवी, कौन सी देवी, सरस्वती माता, सरस्वती माता जो कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, उनको, और व्यासम अर्थात व्यास जी को, तत्पश्चात ततः यानी तत्पश्चात जयम यानी कि जय करने वाला, विजय प्राप्त करने के लिए उदीरयेत, घोषित करे। अनुवाद देखिए, इस विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवतम का पाठ करने यानी सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव जी को नमस्कार करे। यानी कि जो चाहते हैं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण जब अध्ययन करें, क्योंकि यह दिव्य साहित्य है और हम क्योंकि भौतिक धरातल पर हैं, तो हम तब तक इस दिव्य शास्त्र को, इसके शब्दों को, इसके श्लोकों को श्रवण करने के योग्य नहीं होते हैं जब तक कि हमारे ऊपर कृपा नहीं होती है। तो कृपा का पात्र बनने के लिए हमें प्रणाम करना होता है, नमस्कार करना होता है, तो ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमारे जो भागवतम के वक्ता कौन है, श्रीला सूत गोस्वामी, हम उन्हीं के मुखारविंद से सुन रहे हैं और सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भागवतम महापुराण को श्रवण अर्थात अध्ययन करने से पहले हमें इन सबको प्रणाम करना चाहिए। और इससे क्या होगा, ततो जय मुदीरयेत। अब यहाँ पर जय शब्द आया है, जय का क्या मतलब होता है, विजय प्राप्त। अब इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम को जय कहकर बुलाया गया है, जय के नाम से पुकारा गया है। अब जय का क्या मतलब है कि ये श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा शास्त्र है जो हमें संसार संघर्ष से विजयी प्राप्त कर सकते। वास्तव में क्या है भक्तों, यह संसार में दुख है और समस्त जीव सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुख को सोचता है कि इससे सुख प्राप्त होगा, ये प्राप्त करूंगा तो सुख प्राप्त होगा, ये प्राप्त करूंगा तो सुख प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से ये पूरा जो हमारा जीवन है ना, वो एक युद्ध बन गया है, कंटिन्यूस एक संघर्ष चल रहा होता है कि यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो सुख होगा, यह प्रॉब्लम, सदैव हमारा जीवन केवल संघर्षों से उलझता रहता है। कि जो गरीब है वो क्या सोचते हैं कि थोड़ा अमीर हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, जिनके पास संतान नहीं है वो क्या सोचते हैं कि मैं किसी तरह से स्ट्रगल करूंगा, मतलब कुछ भी करके संतान उत्पत्ति हो जाएगी मुझे तो सुख हो जाऊंगा। जिसके पास घर नहीं है वो उसके लिए संघर्ष करता है, जिसके पास गाड़ी नहीं उसके पास वो उसी के लिए संघर्ष करता है, जिसके पास पत्नी नहीं वो उसके लिए संघर्ष करता है, और जिसके पास विद्या नहीं है वो उसके लिए संघर्ष। ये जीवन एक संघर्ष है, हम उस संघर्ष को कर क्यों रहे हैं, ताकि हम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा उससे लेकर एक बड़े से बड़ा राजा वहां तक हर कोई जीव संघर्ष कर रहा है। इवन मनुष्य को छोड़ के अगर हम पशु पक्षियों को भी देखें, तो एक कुत्ता जो होता है वो भी जब धूप तेज हो जाती है तो भागता है, किसी वृक्ष की छांव ढूंढता है ताकि मैं इस धूप के झुलसने से बच जाऊं, इस कष्ट से बच जाऊं, और वो वहीं पर संघर्ष करता है अपने जीवन का कि मैं संतुष्टि प्राप्त करूं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन नहीं करता, जब तक, क्योंकि जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और जीव क्योंकि उसकी वास्तविकता क्या है कि वो भगवान का अंश है, तो जब तक भगवान के विषय में उसे ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को वो फिर से निर्माण नहीं कर लेगा, जब तक कृष्ण का प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, तब तक उसकी जय, इस संघर्ष से उसकी विजय होना संभव नहीं है। तो यदि कोई सुख प्राप्त करना चाहे, वास्तव में यदि वो जीवन की इस कठिनाइयों से, इस मुश्किलों से, इस संघर्ष से, इस दुख से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसका एक ही उपाय है कि वो श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करे। क्योंकि केवल श्रीमद् भागवतम ही है जो उसे वास्तविक संतुष्टि, संसार के दुखों के साथ उसका जो ये युद्ध चल रहा है उसमें विजय प्राप्त कराएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में पूरा इसी जय शब्द पर ही बात की है कि जय शब्द को ही पूरा बखान किया है कि ततो जया मुदीरयेत। तो उदीरयेत मतलब कोश, तभी आप है ना जय प्राप्त कर सकते हो जब श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ो। लेकिन उससे पहले आपको इन सबको नमस्कार करना है, उसके विषय में वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की इस श्रील प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजयी प्राप्त करने के लिए हैं। अब जितने भी, अब यहाँ पर एक बात श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जितना भी वैदिक साहित्य है, जितना भी वैदिक साहित्य है ना, उसका एक ही कारण क्या है कि संसार में मनुष्य जो आया है वो गहनतम बहुत ही अंधकार में है। तो इस अंधकार से विजय प्राप्त करना मतलब अज्ञान को खत्म करने के लिए है। जीव का अज्ञान क्या है कि वो अपने आप को प्रभु समझता है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए चेष्टाएं करता है, जबकि उसका अज्ञान यह है कि वो खुद को यह शरीर समझता है। वास्तव में ज्ञान क्या है कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और यह सारे जितने भी वैदिक साहित्य हैं वो हमें उसी भगवान के विषय में बताते हैं कि जिससे हम अपनी इस वास्तविक अवस्था को, अपने स्वभाव को प्राप्त कर सके। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि जितने भी वैदिक साहित्य हैं वो सारे ही पुराण, जितने भी पुराण हैं। अब मैं आपको बताऊं, आपको पता है कितने पुराण हैं? हमें पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के 18 पुराण हैं, और 18 पुराणों में से 6 पुराण सात्विक की पुराण है और 6 रजोगुणी है और 6 पुराण तमोगुणी है। जैसे मैं आपको बताऊं, 6 सात्विक पुराण है विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण और पद्म पुराण। ये 6 सात्विक पुराण है जिसमें श्रीमद् भागवतम महापुराण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इनको कहा जाता है ग्रंथराज, यानी कि किंग ऑफ द लिटरेचर। श्रीमद् भागवतम महापुराण से हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ डायरेक्ट से संबंध स्थापित होता है हमारा, और भगवान श्री कृष्ण का जितना सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम महापुराण में है उससे ज्यादा सुंदर और किसी पुराण में नहीं है। यह श्रीमद् भागवतम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम और सुंदर उपाय है। तो यह 6 पुराण हमारे सात्विक के पुराण है। उसके बाद 6 पुराण राजसिक पुराण है, जिनमें है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मा पुराण और मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण। ये रजोगुणी पुराण है, और 6 तमोगुणी पुराण है जिसमें है शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। ये तमोगुणी पुराण। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पुराणों में भगवान के विषय में नहीं, सारे पुराण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15.15 में, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे वचा, कि जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन्हें यदि कुछ जानने योग्य है तो वो मैं हूँ। तो वास्तव में जीव की स्थिति के हिसाब से सारे पुराण हैं। अगर आप तमोगुण में हो तो फिर तमोगुणी पुराण पढ़ने से क्या होगा, आपका तमोगुण नष्ट हो जाएगा और आप आगे विकसित हो जाओगे, रजोगुण में आओगे। फिर रजोगुणी पुराण पढ़ने के बाद आप सत्वगुण में। लेकिन अगर आप पहले से ही रजोगुण में हो तो फिर तमोगुणी पुराण पढ़ने के लिए नहीं, आपको रजोगुणी पुराण पढ़ के सत्वगुण में आना पड़ेगा। और अगर आप सत्वगुण में हो तो फिर आपको सात्विकी पुराण पढ़ के शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा, क्योंकि सात्विक पुराण है जैसे विष्णु पुराण और ये श्रीमद् भागवतम महापुराण, नारद पुराण। इससे क्या होगा, आप विशुद्ध सत्व यानी अपने और कृष्ण के साथ अपने संबंध को इंस्टेंट जोड़ने के लिए आप, मतलब आपको भौतिक चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक्षिणा प्रभुपाद जी ने हमें डायरेक्ट से सत्तोगुणी पुराण को ना प्रेफर किया हमारे लिए कि आप इसको पढ़ोगे तो डायरेक्ट से आप शुद्ध सत्तों में चले जाओगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया किम वह परे ईश्वर है, क्योंकि यह जो है उसके अंदर कोई कहतव नहीं है, उसके अंदर आपको और कुछ नहीं बताया जाता है कि आप वर्ण में क्या हो, आप क्या क्या वर्ण है, क्या आश्रम है आपको, और क्या करना है, किस देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, सब कुछ नहीं है। केवल भगवान के साथ आपका क्या संबंध है और उस संबंध को, उस प्रेम के संबंध को आप कैसे वापस से पुनः निर्माण कर सकते हो, केवल यही एक श्रीमद् भागवतम है जो हमें बताता है। तो इसीलिए कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये तो समस्त वेदों का पक्का हुआ फल है और इस फल को खाने के बाद आपको और कुछ खाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। ततो जाया मोदी रहिए, कि इसी से आपका संघर्ष जो है उसमें आप विजय प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बोला सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के। श्रील प्रभुपाद जी ने तो सारे जितने भी शास्त्र हैं, इवन जो कुरान और बाइबल को भी वैदिक साहित्य से ही, क्योंकि वहां से उठकर जब आप पवित्र होते हो तो आपको आगे दशा मिलती है। ये कोई साधारण व्यक्तियों ने नहीं लिखे, ये भगवान ने ही, क्योंकि भगवान इतनी करुणामयी है कि मनुष्य का या जीव का जो स्टेज होता है ना उसके हिसाब से भी, जीव के हिसाब से भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वो क्रमशः आगे बढ़ते 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 मुझ तक पहुंचे। भगवान ने ये सब, इसे भगवान कहते हैं समस्त शास्त्रों में यदि जानने योग्य कोई है तो मैं हूँ। तो चाहे कोई भी शास्त्र हो उसमें यदि कोई परफेक्ट शास्त्र है और वो बता रहा है तो केवल कृष्ण के विषय में ही बता रहा है, ऑथेंटिक जितने भी शास्त्र हैं वो कृष्ण के विषय में बताएंगे। तो वास्तव में हमारा भगवान कृष्ण है और हम भगवान के दास हैं। तो जैसे एक कुत्ता होता ना, तो उसका कुत्ते का मालिक, कुत्ते का जो स्वामी होता है ना, वो यदि सलवार सूट पहन कर आए या धोती कुर्ता पहन के आए या सूट पहन के आए या शेरवानी पहन के आए, तो कुत्ता जो है वो अपने स्वामी को, अपने मालिक को पहचान लेता है। तो हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वो जो शास्त्र के अंदर जो लिखा है, चाहे वो अल्लाह के नाम से लिखा है, चाहे गॉड के नाम से लिखा है, चाहे परमात्मा के नाम से लिखा है, चाहे कृष्ण के नाम से लिखा हुआ है, वो सारे डायरेक्ट से इंगित करता है मेरे प्रभु कृष्ण को। तो किसी भी शास्त्र के विषय में यदि कोई निंदा करता है कि ये रॉन्ग है, आप गलत हो, ये सही है, ये नहीं है, वो गलत नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, कि वो ज्ञान जो होता है उसके अंदर अभी भगवान जो है वो पूरी तरह से दिखते नहीं है, लेकिन वो गलत नहीं होता है। तो यदि कोई सोचता है कि कोई और धर्म ग्रंथ गलत है, तो वो तो उस कुत्ते से भी गया गुजरा है जो कि कम से कम अपने मालिक को, अपने स्वामी को किसी भी रूप में, किसी भी ड्रेसिंग में पहचान लेता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम भी जानते हैं कि वो चाहे अल्लाह के नाम से पुकारा जाता है या गॉड के नाम से या विष्णु के नाम से या परमात्मा के नाम से, वो वही भगवान है जो गोविंद है, जो आदि पुरुष है। लेकिन यह ज्ञान होना कि वो आदि पुरुष गोविंद कौन है, वो हमसे किस तरह से प्रेम संबंध करता है, वो दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, मुस्कुराता कैसा है, उसका प्रेम करने का क्या तरीका है, वो किस तरह से हृदय बंसी वादन करके, उसका कार्य क्या है। तो यह जो है ना श्रीमद् भागवत महापुराण डायरेक्ट से उस भगवान के विषय में सब कुछ बताता है। इसीलिए यह महापुराण जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज है कि उसमें कुछ भी कहतव नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल गया है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष शाश्वत है और जीव के लिए इसमें ये योजना बनाकर निकल पाना संभव नहीं है। अभी जीव अपने लिए, अपनी जीव क्या करता है, अपनी योजनाएं बनाता है ना कि मैं ये करूंगा तो इस संघर्ष से पार हो जाऊंगा, ये करूंगा तो दुखों का निवृत्त हो जाएगा, ये करूंगा। जीव का संघर्ष शाश्वत है लेकिन वो अशाश्वत कारणों से इस संघर्ष को खत्म करना चाहता है। लेकिन ये श्रीला प्रभुपाद जी साफ कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष शाश्वत है और जीव के लिए इसमें से योजना बनाकर निकल पाना संभव नहीं कि अपनी मर्जी से ये करो तो तुम सुखी हो जाओ, ये ऐसे संभव नहीं है। यदि वह इस शाश्वत संघर्ष से यानी विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ नित्य संबंध पुनः स्थापित करना होगा। कितना सुंदर श्लोक रूपा जी बता रहे हैं कि अगर आप इस जीवन के संघर्ष को पार करना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पर जो लिखा कि ततो जया मुदीरये कि इस शास्त्र को पढ़ने से यानी कि भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करने से ही आपके जीवन का संघर्ष समाप्त होगा। जो भी इस प्रकार से उपचार करना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अगर वो वास्तव में जानना चाहता है, क्योंकि अपनी योजना से तो वो नहीं कर सकता इस संघर्ष को पार, दुखों का निवारण नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना है, वेदों और शास्त्रों का आश्रय लेना है। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार कोई संबंध नहीं होता है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूर्वक व्याख्याएं। अब बेवकूफ लोग हैं, वो समझते हैं कि पुराण जो है वो वेदों से बिल्कुल भी लिंक नहीं रखते हैं, लेकिन ये पुराण जैसे हमने बताया अभी आपको कि 18 पुराण किस तरह से रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, क्यों किए गए हैं, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी उसका कारण बताते हैं कि किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए, अब सारे लोग इस योग्य नहीं है कि वो सत्वगुण का ज्ञान है ना एक्सेप्ट कर सके, तो जैसे जैसे वो रजोगुणी होते हैं तो उनको वही चीज चाहिए होती है ना कि मेरे रजोगुणी मतलब इच्छाएं रखने वाले। अब इच्छाएं रखने वालों का इस श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या आकर्षण होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण तो कभी बताएगा नहीं कि तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी, ये भौतिक इच्छाएं कि ना तुम किस तरह से सुंदर बन सकते हो, किस तरह से लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से विद्या प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से जीवन अवधि को बढ़ा सकते हो, ये सब तो तुम्हें नहीं बताएगा श्रीमद् भागवतम। तो जो रजोगुणी होंगे वो कहाँ से इसमें आकर्षण उत्पन्न कर सकेंगे। तो जैसा जैसा जीव का स्वभाव है ना, जैसे प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों का वेदों की पूर्वक व्याख्याएं हैं, ये जितने भी पुराण हैं वो सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ लोग सत्वगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों का ऐसा विभाजन हुआ है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त करके जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अब वास्तविक लक्ष्य क्या है कि अपनी धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति तक पहुंचना। खोई स्थिति क्या है, जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो इस दासत्व को जब जीव पहुंचता है तभी उसके जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाता है और उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। तो सारे पुराण हमें कर मतलब स्टेप बाय स्टेप उसी स्टेज तक पहुंचाने के लिए हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराण के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। कौन सी विधि का, जो इस श्लोक में बताया जा रहा है ना कि हम किस तरह से प्रणाम करके और फिर शास्त्र अध्ययन करें। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने की इच्छुक हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताते हुए श्रीला प्रभुपाद जी बोलते यही एक ग्रंथ है जो भवबंधन से छूटने के इच्छुक व्यक्तियों को जय प्रदान करेगा, विजय प्रदान करेगा। तो फिर इस भागवत महापुराण को पढ़ने से पहले हमें नमस्कार करना होता है, मंगलाचरण करना होता है, ताकि हम जिस भौतिक दशा के कारण भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आध्यात्मिक आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होगा किसका, सबसे पहले नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। सबसे पहले हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है नारायण। अब नारायण किसे कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण नारायणम वंदे, शास्त्र कहता है नारायण तो कृष्ण ही है, तो उसी की वंदना करनी चाहिए। तो सबसे पहले कृष्ण को नारायण कहकर संबोधित किया और उनको प्रणाम करने के बाद नारायणम नमस्कृत्य नरम। अब नर कौन है? नर है धर्म के पुत्र। अब धर्म कौन है? धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। वास्तव में यह सब जो भी हम शब्द सुनते ना, वो उनका एक वास्तविक अस्तित्व है। तो जैसे कलयुग, कलयुग भी हम सुनते हैं तो हमारे लिए वो युग है, लेकिन उसका एक वास्तविक अस्तित्व है। तो उसी तरह धर्म जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और धर्म के पुत्र हैं नर और नारायण। वास्तव में धर्म का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ। दक्ष की टोटल 16 कन्याएं थी। 16 कन्याओं में से जो सबसे छोटी पुत्री मूर्ति जिसका नाम था, उनका विवाह धर्म के साथ हुआ और उनसे नर नारायण दो जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। यही नर नारायण बद्री नारायण के नाम से विख्यात है। जैसे हम बद्री नारायण में जाते हैं ना, बद्री का आश्रम में, तो वहां पर बद्री नारायण जो बेर के वृक्ष के नीचे नर और नारायण तपस्या करते रहते हैं। क्यों तपस्या करते हैं? संसार की रक्षा के लिए। ये भगवान का शक्ति आवेश अवतार है नर और नारायण, और इनको भगवान ने यह ड्यूटी दी है कि आप संसार में जाकर बद्री नारायण बद्री का आश्रम में तपस्या कीजिए, ताकि संसार में जितने मेरे भक्त हैं, जितने जीव हैं, उनकी रक्षा हो सके। ये उन्हीं की रक्षा, उन्हीं की तपस्या का प्रभाव है कि आज हम जी रहे हैं। वरना कितने विश्व युद्ध होते हैं और इतने सारे है ना बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं, और संसार में जो ये साइंसदान इतने नाभिकीय अस्त्र बनाते हैं, इतनी 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 संख्या में ये युद्ध होता है, जीव हत्या होती है, अपवित्र कार्य होते हैं, इनके कार्य कारण वरना अब तक प्रलय आ गया होता यदि ये नर और नारायण बद्री का आश्रम में तपस्या, और ये अभी भी तपस्या कर रहे हैं। ये चारों युग जब तक कंप्लीट होते हैं तो ये कंटिन्यूस तपस्या करते रहते हैं, और उसके बाद ना ये कारण रक्षा विष्णु के द्वारा फिर वापस से जब युग होता है तो ये स्टार्ट से ही तपस्या करते रहते हैं और कंटिन्यूस करते रहते हैं। और नारद जी इन्हीं के शिष्य हैं। नारद जी जब ब्रह्मा जी से नारद जी का जन्म हुआ तो नारद जी ने ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप जाइए और नर नारायण से भिक्षा लीजिए। तो यही नर नारायण जो तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? कि जो भक्ति कर रहे हैं उनकी भक्ति का की रक्षा हो सके। तो हमें उन नर नारायण को प्रणाम करना होता है। सत्युग में अब देखो नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं, और ये बद्री का आश्रम हमारा एक धाम है। हमारे पास चार धाम है ना, तो सत्युग में यहाँ बद्री का आश्रम में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। त्रेता युग में रामेश्वरम में भगवान के दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। द्वापर युग में द्वारिका में भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, और कलयुग में जानते हैं कहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं? जगन्नाथपुरी में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। वास्तव में भक्तों, भगवान की लीला, भगवान की महिमा बहुत ही अत्यंत ही गुह्य है। तो जितने बड़े बड़े मोहयंत यत्सुरया, बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। जब नर और नारायण बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को ऐसा लगा कि कहीं ये मेरी सीट लेने के लिए, इंद्रासन लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने, इंद्र ने बहुत सारे अप्सराओं को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव सहित भेजा, परंतु नर और नारायण कोई साधारण व्यक्ति, वैसे तो इंद्र अक्सर ऐसा करते हैं, जैसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा, मैंने कहा आई और विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। लेकिन नर और नारायण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, या तो फिर क्या होता है, वो तपस्या भंग कर देते हैं, यानी कि काम उन पर अटैक हो जाता है जो बाकी लोग होते हैं। जैसे शिव जी की तपस्या भंग नहीं कर सके, लेकिन शिव जी के क्रोध को खत्म ना कर सके, है ना। तपस्या काम को तो शिव जी ने कंट्रोल कर दिया कि वो मतलब कामदेव की वजह से वो परास्त नहीं हुए, लेकिन उसके बाद क्रोध से कामदेव को ही भस्म कर दिया। लेकिन नर और नारायण सदैव शुद्ध सात्विक भाव में होते हैं, वो उनके अंदर ना काम है और ना क्रोध। तो जब कामदेव और समस्त अप्सराएं वहां पर आई, लेकिन वो उनकी तपस्या को भंग ना कर सकी, तो फिर जब नर नारायण ऋषि ने अपने नेत्र खोले तो डर गए कामदेव और सारी अप्सराएं कि अब तो ये हमें भस्म कर देंगे, तो भागने लगे। लेकिन नर नारायण ने कहा, नहीं नहीं आप जा कहाँ रहे हैं, आप तो मेरे अतिथि हो, अतिथि सत्कार करना तो हमारा कर्तव्य है, आप आइए और हम आपकी का अतिथि सत्कार करेंगे। अतिथि देवो भव, अतिथि तो जीवन में फर्स्ट टाइम कामदेव का स्वागत हुआ, क्योंकि या तो कामदेव जब तपस्या करने जाते हैं, किसी बंग करने जाते हैं, तो या तो वो परास्त होते हैं, जीत जाते हैं तो भी है ना उनको पता नहीं लगने देते हैं कि ये मैं युद्ध कर रहा था, वो तो हो जाता। लेकिन जब हार गए, अब हारने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हारने के बाद भी उनका स्वागत किया गया, उनका सत्कार किया गया। तो फिर सत्कार करने के बाद नारायण ऋषि ने अपनी जंगा से कई अप्सराएं उत्पन्न की और उनको दिखाया कि देखो अप्सराएं मुझे विचलित नहीं कर सकती, वास्तव में यह काम जो है ना उसको वश में करना बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान की सृष्टि में जो सबसे प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, वो भी अपने काम को कंट्रोल नहीं कर पाए, और अपनी ही पुत्री के पीछे जो कि हिरनी का उन्होंने रूप धारण कर दिया और फिर बेल के रूप में उनके पीछे आए, बहुत ही लज्जाजनक। अभी हम पढ़ेंगे, ये वास्तव में हमें दिखाने के लिए है कि आप यदि कुछ तपस्या कर लो और है ना कुछ साधना कर लो, तो कभी आप ये मत सोचना कि आप काम पर विजय प्राप्त कर सकते हो। काम पर विजय प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। शिव जी भी मोहिनी पर मोहित हो गए। तो ये बताना चाहते हैं इन देवताओं के माध्यम से कि जीव कभी भी ये ना सोचे कि मैं काम को विजय प्राप्त कर सकता हूँ, काम को विजय कर सकता हूँ। इसीलिए शास्त्र कहता है कि कभी भी एक पुरुष को स्त्री के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि काम जो है वो सदैव अटैक करने के लिए सोचता रहता है। तो साधारण जीव नहीं कर सकते, लेकिन ये यहाँ पर तो नर नारायण ऋषि की बात हो रही है। तो इतनी सारी अप्सराएं उत्पन्न की और फिर उनमें से उर्वशी नाम को उस कामदेव को उपहार के स्वरूप में दी। पहले उनका अतिथि सत्कार किया, फिर उनको उपहार के स्वरूप में भेंट दिया कि ये आप ले जाइए, ये आपकी स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। तो इसीलिए उनका नाम उर्वशी, और उर्वशी और कहते हैं जंगा को, क्योंकि जंगा से उत्पन्न हुई थी इसलिए। और नर नर अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि द्वापुर में यही कृष्ण नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में। अब पहले नर और नारायण जब इस संसार में सत्ययुग में आए थे, तो उस समय एक सहस्र कवच नाम का एक असुर था जो बहुत बहुत ना भक्तों को तंग करता था, और बहुत जिसने अपराध और संसार को बहुत दूषित करता था, ऐसा ऐसे से कार्य कर रहा था जिससे भक्तों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था, और समस्त पृथ्वी पर वो विजय प्राप्त करना चाहता था। कोई भी उससे, क्योंकि उसके पास सहस्त्र कवच थे, कवच यानी कि कोई उससे जीत नहीं सकता था। तो फिर सब जितने भी ऋषिगण हैं वो भगवान के पास गए और कहा इस राक्षस से, इस असुर से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने नारायण को भेजा कि इसकी आप इसको है ना इसका वध करो, लेकिन इसको यह वर प्राप्त था कि जब तक आपके सारे सहस्र कवच यानी कि 100 कवच जब तक आपके टूट नहीं जाते, भंग नहीं हो जाते, तब तक उसकी मृत्यु होना संभव नहीं थी। और एक कवच को तोड़ने के लिए 1,000 साल की तपस्या जो करेगा ना वही तोड़ सकता है। तो फिर नारायण और नारायण ने सोचा कि ऐसे कैसे करें, 1,000 साल तक हम तपस्या करें। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि एक ऐसी बद्री का आश्रम में यदि आप 1 दिन तपस्या करते हो तो उसका फल जो है वो 1,000 वर्ष के जितना हो, 1,000 साल की तपस्या के बराबर होता है। तो उन्होंने बद्री का आश्रम में तपस्या शुरू की और एक दिन कृष्ण नारायण तपस्या करते थे और फिर में एक दिन नारायण ने तपस्या की और उसके बाद ये युद्ध के लिए उसको ललकारा सहस्र कवच को, और क्योंकि 1,000 वर्ष की तपस्या का फल था उनके पास इसलिए 1 कवच का भेदन कर दिया। और दूसरे दिन नारायण ने कर ली थी तो फिर नर ने तपस्या की तो उसको 1,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त हुआ और उन्होंने दूसरे कवच को तोड़ा। और इस तरह करते 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 अंत में कृष्ण ने जब इसके 99 कवच, आप क्योंकि स्टार्ट किया था कृष्ण ने, नारायण ने स्टार्ट किया था, तो अंत में जो 1/4 कवच था वो किसको तोड़ना था, नर को तोड़ना था। तो 99 कवच जब यानी कि कृष्ण ने आखिरी दफा नारायण ने कवच तोड़ दिया तो फिर अब उसने देखा सहस्र कवच ने कि अब तो यदि मैं इसके सामने रुकूंगा तो ये तो जाहिर सी बात है मेरा यह आखिरी कवच भी तोड़ देगा और मेरी हत्या कर देगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो जो सहस्र कवच थे वो सूर्य देव में छुप गए, सूर्य देव के अंदर जाकर उन्होंने शरण ग्रहण कर ली। और फिर और नारायण अभी तक वहीं पर तपस्या ही करते रहते, लेकिन द्वापुर में अब उन्होंने देखा कि वही सहस्र कवच जिसका एक अंतिम कवच अभी रह गया था वो करण के रूप में वापस उत्पन्न हुआ। और जब अब क्योंकि आखिरी कवच किसको तोड़ना था, नर को, तो इसलिए अंतिम यह कवच जो है वो अर्जुन के माध्यम से यानी कि अर्जुन के माध्यम से ही उसका वध हुआ। ये नर और नारायण के विषय में हमने पढ़ा और इसके बाद है नरोत्तमम। नरोत्तमम का मतलब होता है मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 8.4 में बताते हैं कि अर्जुन तुम समस्त नरों में श्रेष्ठ हो। भगवान अर्जुन को कहते हैं देहे देह व्रतांवर, ए मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ। तो अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ नरोत्तम कहा गया है। और आगे भी संजय बताते हैं यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते भवानी तिर्म तिर्मम। जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहाँ पर उनके परम मित्र अर्जुन होंगे वहीं विजय होगी। तो यदि हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो नर और नारायण दोनों को यानी अर्जुन और कृष्ण दोनों को नमस्कार करना है। और उसके बाद है नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम। अब यहाँ पर सरस्वती महारानी का प्रणाम करने के लिए कहा गया। उनके लिए क्यों कहा गया, क्योंकि जो सरस्वती महारानी है ना वो भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान विष्णु की 3 पत्नियां हैं, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। ये सब पहले वैकुंठ में साथ में रहती थी, अभी तो हम देखते हैं केवल लक्ष्मी महारानी, लेकिन शुरू में ये 3ों पत्नियां विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती थी। एक बार सरस्वती और गंगा में कुछ मतभेद हो गया, मतलब अब 3 पत्नियां साथ में रहना तो जाहिर सी बात है कभी मतभेद तो हो ही जाता है, तो दोनों में कुछ मतभेद हुआ। अभी हम पढ़ेंगे विष्णु मतलब आगे इस तरह की कोई लीलाएं, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और दोनों नदियां बन गई, सरस्वती नदी बन गई और गंगा भी नदी बन गई। फिर विष्णु ने कहा मैं तुम दोनों का त्याग करता हूँ, तुम वैकुंठ में रहकर भी लड़ते हो तुम, और है ना इस तरह से एक दूसरे को श्राप दे दिया। और फिर इसने से सरस्वती माता को कहा तुम एक अंश के रूप में ब्रह्मा जी के साथ रहो और एक अंश के रूप में वो नदी बन गई। और वही सरस्वती जो है उनको यह भगवान ने कार्य सौंपा कि समस्त जितने भी जीव हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देना है। तो ये सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है। भगवान वेदव्यास जी ने जितने भी शास्त्र अध्ययन की, शास्त्र की रचना की, तो यह सरस्वती महारानी की कृपा उन्होंने प्राप्त और उन्होंने लिखा अपने जितने भी शास्त्र हैं, अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना श्लोक, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम, अभी इसमें तो क्या कि द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 4 में आया, और महाभारत में ये तकरीबन जितने भी पर्व हैं, अब जैसे हमारे पास अध्याय होते हैं ना इसमें भागवतम महापुराण में, ऐसे ही महाभारत में पर्व होते हैं, तो संपूर्ण जितने भी पर्व हैं उनके सबसे पहले यही श्लोक का उच्चारण किया गया। गर्ग संहिता में इसी श्लोक का उच्चारण किया गया, क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे कि सरस्वती महारानी विद्या की देवी है और उनको प्रणाम करना अति आवश्यक है, और ये है इनकी कृपा से हम इस योग्य बनते हैं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्ययन करें और उसको समझने का प्रयास कर सकें। ये सरस्वती महारानी हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। वास्तव में ये सरस्वती महारानी की जिसके ऊपर कृपा हो जाए ना, तो फिर वो वेद को शास्त्र को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। इसकी एक कथा आती है चैतन्य भागवतम में, जब केशव कश्मीरी ने सरस्वती माता की बहुत ज्यादा उपासना की थी, तो सरस्वती माता ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके कहा था कि तुम किसी से भी हारोगे नहीं, विद्या में सब सबसे जीतोगे। तो फिर वो सब, अब क्योंकि उसको जब सरस्वती माता ने आशीर्वाद दे दिया तो सबके साथ है ना वाग युद्ध, यानी कि ये डिबेट करने के लिए बोलता था कि आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, तो फिर सब सबको हरा देता था। फिर जब वो नवद्वीप में आया और नवद्वीप में ये कहा कि मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, तो सब पंडित डर गए थे। अभी क्योंकि नवद्वीप उस समय विद्या का इतना बड़ा क्षेत्र माना जाता था, और उस समय यदि सारे पंडित उससे हार जाते तो कितनी मतलब हिंसा अपमान होता ना सबका। तो उन्होंने निमाई को आगे कर दिया और बोला, निमाई अगर हार जाएगा ना तो बोलेंगे ये तो छोटा बच्चा ही तो हारा है, तो छोटे बच्चे से हार गया तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर जीत जाएगा तो क्या बोलेंगे, इतने छोटे से बच्चे से जीत, मतलब इतने छोटा से बच्चा भी उससे जीत गया तो फिर हम क्या इसके साथ है ना शास्त्रार्थ करें। तो फिर है ना निमाई को आगे कर दिया कि, लेकिन जब निमाई के साथ उसका शास्त्रार्थ हुआ, अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, मतलब वो अभी मिले थे और अभी कल जो ये प्रोग्राम था ना कि ये शास्त्रार्थ होने का, ये कल रखा था, लेकिन आज अभी जस्ट आए थे केशव कश्मीरी और निमाई से मिले, और निमाई को कहा, निमाई ने कहा कि, उन्होंने कहा निमाई को कि आपको सुनाओ, तो निमाई ने कहा नहीं आप बड़े हो आप सुनाओ, मैं तो आपका शिष्य हूँ, कुछ आता नहीं है मुझे। तो फिर उन्होंने खड़े खड़े गंगा के प्रशंसा में 100 श्लोक सुनाए, और एकदम वायु की गति से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक संस्कृत में सारे श्लोक सुनाए, और फिर निमाई को बोला कैसे लगे, तो बोला बहुत सुंदर आपने सुनाए, अब आइए इन आपके श्लोकों में दोष और गुण को देखते हैं। तो बोला गुण की बात करो, मेरे श्लोक में तुम्हें दोष कहाँ से दिखेगा। तो बोला नहीं अब मनुष्य हैं गलती करते हैं तो आप देख लेते हैं कुछ दोष भी हो सकते हैं। तो बोला उसको इतना गुस्सा आया कि मेरे श्लोकों में दोष तुम्हें दिखा कैसे। तो फिर है ना निमाई ने एक एक श्लोक को पकड़ के बताया, क्योंकि एकदम फास्ट फास्ट उन्होंने श्लोक पढ़े, फिर भी वो बोलते थे जो आपने 72 श्लोक बोला था ना उसमें आपने ये बोला था, भवानी शब्द बोला था और उसके साथ पार्वती है ना शिव पत्नी बोल दिया, फिर भवानी बोल दिया, मतलब कुछ इस तरह से मिस्टेक्स निकाली बहुत सारी, इस श्लोक में आपने ये बोला, इस श्लोक में एक एक ट्रिक में चार चार पीस मिस्टेक्स निकाली। तो फिर उसको इतना हैरत हो रही थी कि इतने छोटे से बच्चे ने इतना तेज तेज मैंने सारे श्लोक पढ़े और उसमें से है ना कोट करके बता रहा कि इसमें ये मिस्टेक इसमें ये, उसको इतनी लज्जा आ रही थी इतना शर्म आ रही थी। तो जाके बहुत क्रोधित भी हो गया और सरस्वती माता को बोला आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि आप जब भी मैं बात करूंगा तो मेरी मेरी राह रक्षा करोगे और मुझे कभी भी हारने नहीं दोगे, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया, मैं इस छोटे से बच्चे के साथ कैसे हार गया। तो सरस्वती माता ने कहा जिससे तुम हारे हो ना वो कोई साधारण छोटा बच्चा नहीं है, वो तो मेरा पति है, उनके सामने तो मैं बोल भी नहीं सकती, तुम्हारा तो सौभाग्य है कि तुम फिर भी बोल सके, मैं तो मेरी तो उनके सामने बोलती बंद हो जाती है, तो उनसे मैं तुम्हें संसार में किसी से भी जिता सकती हूँ, मगर अपने पति के साथ तो मैं खुद ही हारी हुई हूँ, उनसे तुम्हें कैसे जिता सकती हूँ। तो यह सरस्वती माता जो भगवान विष्णु की पत्नी, और ये वास्तव में सबको ज्ञान प्रदान करती हैं, और जो भी उनके शरण में जाता है तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार श्रीमती राधा रानी उनके समक्ष गई थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सोचा कि मैं राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए, भगवान ने क्या किया, राधा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए स्त्री का रूप धारण किया और राधा रानी के समक्ष आके अपना नाम बताया कि मैं गोप देवी हूँ। तो राधा रानी को वो इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। राधा रानी ने कहा, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी तुम्हारा रंग कितना सांवला है और तुम्हें देखकर नदानी मेरे हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना मतलब कुछ भी बना के, अपनी घनिष्ठ मित्र बना के, अपनी दासी बना के अपने साथ रखो। तुम्हारे साथ रहने में मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है, तुम्हें देख के मुझे बहुत संतुष्ट, बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, तो कृपया तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझसे कभी भी दूर न जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें पता नहीं, तुम्हें देखकर मुझे क्यों कृष्ण की याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कृष्ण के साथ ही उसके साथ का अनुभव कर रही हूँ, तो तुम सदैव मेरे साथ रहना। तो बोला, कृष्ण की बात मत करो इसे, वो बहुत कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी कि कृष्ण ऐसा है, वो मुझे छेड़ता है और उसका तो कुल ही खराब है, इतना मतलब वो गोपों के ग्वालों के कुल में उत्पन्न हुआ है वो, उसको तो विद्या भी नहीं है, उसको तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, इतना बेशरम है ना, सारी लड़कियों को जितनी भी गोपियां हैं उनको छेड़ता रहता है, वो इतना काला है, उसमें तुम्हें क्या अच्छा दिखा, उसके अंदर तुम्हें क्या गुण दिखा, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता। तो फिर है ना, राधा रानी को वो दुख हो रहा था कि अब प्रेम उसके प्रति इतना ज्यादा हो रहा था और उसकी बात सुनकर उसके कृष्ण के विषय में वो ऐसे बोल रही थी, तो राधा रानी को बहुत दुख हो रहा था। राधा रानी ने कहा कि अगर मैं इसको डायरेक्ट से उत्तर दूंगी तो क्या होगा, तो फिर क्रोधित हो जाएगी, तो है ना, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इसको क्रोधित नहीं करना चाहती हूँ। फिर सरस्वती माता को याद किया, बोला, माती कुछ ऐसा करो ना कि मैं इसको उत्तर दूँ और ये क्रोधित भी ना हो, क्योंकि मैं इससे दूर नहीं होना चाहती, इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ से ना। तो सरस्वती माता ने श्रीमती राधा रानी को बोला, आशीर्वाद दिया और श्रीमती राधा रानी उन्हीं के शब्दों में हर एक चीज का उत्तर दिया। पहले उसने बोला था ना कि ग्वाले जो है वो बहुत निम्न कुल के होते, निम्न जाति के होते, क्योंकि वो सदैव गायों के साथ रहते। तो फिर श्रीमती राधा रानी ने उन्हें बताया कि क्योंकि गायों की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है, गायों में संपूर्ण देवताओं का वास होता है, 33 करोड़ देवी देवता, गायों के गोबर में भी देवी देवता रहते हैं, तो फिर क्योंकि ग्वाले सदैव गायों की ना सेवा करते रहते हैं, तो समझो समस्त देवी देवताओं की एक साथ वो सेवा करते हैं। और फिर बोला कि ये इतना काला है और अच्छा नहीं लगता, तो फिर कृष्ण ने राधा रानी ने बोला, इतना सांवला है और इसके सामने इतना सुंदर है कि करोड़ करोड़ कामदेव भी उसके सामने लजाने लगते हैं, उसकी मीठी मुस्कान के विषय में, उनके नेत्रों के विषय में, उनकी सुंदरता के विषय में श्रीमती राधा रानी ने बहुत बहुत बताया। और उसके बाद देना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सबको छेड़ता, तो बोला सब सब जितनी भी गोपियां हैं वो कितना प्रेम करती हैं, वो जाती हैं जानबूझ के उस रास्ते से जहाँ से कृष्ण खड़े होते हैं, तो मतलब जो जो बात वो कह रही थी उसी की बातों से काट के श्रीमती राधा रानी उसका उत्तर दे रही थी। श्रीमती जो सरस्वती महारानी है जिसपे कृपा कर देती हैं, तो वो इनके पास इतना ज्ञान आ जाता है कि वो हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले सरस्वती महारानी को प्रणाम करना होता है और उसके उपरांत किसको करना होता है, देवीं सरस्वतीं व्यासम। अब वेद व्यास जी के विषय में क्या कहें, वेद व्यास जी को क्यों प्रणाम करना होता है, क्योंकि समस्त जितने भी शास्त्र हैं वो हमें वेद व्यास जी के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। यदि वेद व्यास जी की हमारे ऊपर कृपा न होती, वो शास्त्र को लिपिबद्ध ना करते, तो आज हमारे पास कुछ भी ऐसा ना होता जिसको हम पढ़कर भगवान के विषय में जान सकते। संपूर्ण मानव जाति अंधकार, अज्ञान के घनतम अंधकार में गिरी रही होती, किसी को ये भी पता ना होता कि हम कौन है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये हम सब पर वेद व्यास जी की असीम अनुकंपा है। इसीलिए यहाँ पर ना सूत गोस्वामी कहते हैं कि यदि आप वास्तव में शास्त्र का लाभ लेना प्राप्त लेना चाहते हो, तो जब शास्त्र को आप अध्ययन करते हो तो उससे पहले आपको यह श्लोक उच्चारण करना है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। इस प्रकार हमने इस श्लोक को समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, आगे बहुत कुछ हमें श्रीमद्भागवतम में सीखने को मिलेगा। हरे कृष्ण।